दोस्तों, मैं रोमा आपको अपनी पाठिका मीरा की सेक्स कहानी लिखकर बता रही थी कि कंपनी के सहकर्मियों में सेक्स संबंध किस तरह से बनते हैं और क्या क्या होता है। पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि मीरा अपने बॉस के साथ मीटिंग के लिए दूसरे शहर गई थी। उधर वह अपने बॉस निखिल के लौंडे से चुत गई। ये कहानी सुने। कुछ ही दिनों बाद कंपनी की ऑनर मिताली मैडम ने मुझको और निखिल सर को बुलाया। मिताली ने कहा, निखिल और मीरा, आप दोनों जिस प्रोजेक्ट पर काम किया था, मीटिंग के लिए भी गए थे, वो हमें मिल गया है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। यह सुनकर हम दोनों बड़े खुश हुए। तभी मिताली मैडम ने कहा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में निखिल, मैं आपको प्रमोशन कर रही हूँ और मेरा आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है और बैड भी। मैंने कहा, मैम, मैंने तो इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है, फिर मेरे लिए गुड और बैड दोनों क्यों? मैंने कहा, बताइए गुड न्यूज़ क्या है। बोले, गुड तो ये है कि तुम्हारा भी प्रमोशन हो गया है, लेकिन फिर बैड न्यूज़ ये है कि हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसके लिए तुम्हें दूसरे शिफ्ट में काम करना शुरू होगा। पर मैम, मैं अकेले किसी दूसरे सिटी में कैसे रह पाऊंगी? तो मैम ने कहा कि देखो, प्रमोशन चाहिए तो थोड़ी एडजस्टमेंट तो तुमको करनी पड़ेगी, फैमिली को मनाना तुम्हारा काम है। मैंने कहा, जी मैम। इसीलिए मैंने बात फैमिली को बताई, जैसे तैसे वो मान गए और अगले हफ्ते में नई सिटी में शिफ्ट हो गई। मुझको यहाँ कंपनी की तरफ से एक बंगला और कार भी मिली थी। कार चलने के लिए एक ड्राइवर मिला था जिसका नाम शंकर था। बंगले में काम करने के लिए एक नौकरानी भी थी जिसका नाम कांता था। शंकर मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पर आया और वो उसे बंगले तक ले गया। शंकर ने बंगले की नौकरानी कांता से मुझे मिलवाया। शंकर और कांता दोनों मियां बीवी थे। शंकर की उम्र कुछ ज़्यादा थी, वह करीब 40 साल का था, पर कांता काफ़ी कम उम्र की थी। अगले दिन सुबह नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। नई जगह थी, नया काम था। अशोक नाम का एक लड़का मेरा असिस्टेंट था। अशोक ने मुझे ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉयज से मिलवाया। मैं अपने प्रमोशन को लेकर काफ़ी खुश थी और बहुत कुछ देना चाहती थी इस प्रोजेक्ट को। अशोक ने जब मुझको देखा तो वो मुझे देखता ही रह गया। मैंने लाल कलर की साड़ी और बैकलेस ब्लाउज तो पहना था, पर अशोक ही अपनी चोर नज़रों से कभी मेरी कमर को ताड़ता और कभी मेरे बूट्स की गहराइयों को। ऐसे ही एक दिन मैं अशोक में काफ़ी काम कर रहे थे। उस दिन काम बहुत ज़्यादा था। दोनों को काम करते करते रात करीब 9 बज गए, हम दोनों ही बचे थे। तब अशोक ने कहा, मेरा मैम, चलिए अब हम भी काम चलते हैं, सारे एम्प्लॉय घर जा चुके हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम भी चले जाओ, मैं भी चली जाती हूँ। मुझको इस थकान में उस रात निखिल के साथ होटल के रूम में बिताए कुछ पल याद आ गए और मैं ख्यालों में खो गई। आकाश ने मुझसे कहा, मैम, आप किन ख्यालों में खो गई हो? आपको घर नहीं चलना क्या? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अशोक, तो चलिए मैं ऑफिस को लॉक करवा देता हूँ। कार में बैठी तो थोड़ी दूर आगे चलकर कार खराब हो गई। पीछे से बाइक पर अशोक भी आ गया, मेरी कार को देखकर रुका। उसने शंकर से पूछा कि क्या हुआ। शंकर ने बताया कि कार खराब हो गई है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैकेनिक को तो बुलाना ही पड़ेगा। अशोक ने कहा, मैम, आप ऑटो या कैब से नहीं जाइए, सेफ नहीं है। आइए, मैं आपको अपनी बाइक पर घर छोड़ देता हूँ। अशोक ने बाइक स्टार्ट की और हम दोनों घर की तरफ चल दिए। रास्ते में अशोक मीरा से बोला, मैम, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगी? यहाँ कुछ ढाबा है। मैंने कहा, खा ही लेते हैं, रात के करीब 12 बज गए हैं। फिर हम दोनों वहाँ से निकलकर घर के लिए रवाना हुए थे कि हल्की हल्की बारिश हो गई। घर पहुँचते पहुँचते हम भीग गए। डोरबेल बजी तो कांता ने दरवाज़ा खोला, अपने पति शंकर के बारे में पूछा तो मैंने मैकेनिक वाली सारी कहानी सुना दी। कांता ने कहा, ठीक है बीबी जी, मैं खाना लगा देती हूँ, मैं खाना खा कर आई हूँ, मैंने जवाब दिया। कांता, आप तो भीग गई हैं, जाकर कपड़े बदल लीजिए। मैंने कहा, अरे अशोक, तुम भी तो गीले हो गए हो, एक काम करो, उस रूम में जाकर तुम भी कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। और कांता, तुम अशोक को एक तौलिया दे दो ना। अशोक, मैम, अगर मैं कपड़े निकाल दूंगा तो पहनूंगा क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, नहीं, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तुम अभी कहीं जाओ भी मत और अपने कपड़े कांता को दे दो, वो प्रेस से सुखा देगी। अशोक, हाँ मैम, थैंक यू, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। इधर अशोक भी रूम में कपड़े बदलने चला गया और मैं भी। अब सिर्फ अंडरवियर में था और तभी कांता कमरे में आ गई। अशोक को यूँ अर्धनग्न देखकर कांता भी चौंक गई, पर इससे अशोक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कांता उसे इस हालत में देख रही थी। चूंकि कांता एक जवान और सुंदर महिला थी तो उन दोनों के बीच एक मूक वासना धीरे धीरे पनपने लगी। जब उसने एक जवान मर्द को अपने सामने यूं अर्धनग्न अवस्था में देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। अशोक, ऐसे क्या देख रही हो कांता? कांता, कुछ नहीं साहब, आपके कपड़े गीले हो गए, मैं सुखा लाती हूँ। अशोक, ये लो, जल्द से जल्द सुखा दो। कांता अशोक पर अपनी आंखें सेकती हुई वहाँ से निकल गई। इधर मैं अपने कमरे में आई और गीले कपड़े निकालने लगी और नहाने के लिए शावर के नीचे खड़ी हुई। निखिल के साथ बिताए हुए वो पल मुझे आज भी कसोट रहे थे। अशोक कांता को ढूंढते ढूंढते मेरे रूम की तरफ आने लगा। मेरे रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था तो धीरे से अंदर चला आया। थोड़ा आगे बढ़ा तो बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला ही था और मैं आँखें बंद किए मदहोश शावर के नीचे नंगी खड़ी थी। एक मिनट के लिए तो चौंक गया, पर मुझे इस तरह देख कर उसके भी यौन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा जागने लगी। मेरी और अशोक दोनों की इच्छाएं प्रबल हो रही थी मन ही मन में। तभी मैंने शावर को बंद करके अपनी आंखें खोली और बाथरूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ी तो सामने अशोक था। मैंने फटाफट अपने नंगे बदन कर तौलिया लपेटा और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैम, वो तुम्हें कांता को ढूंढते हुए यहाँ आ गया और मेरे कपड़े सुखाने ले गई थी। वो थोड़ा घबराया था लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, वैसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, क्या? बोला, आप गीले बदन में बहुत सेक्सी लग रही हो, अपने सेकंड सेक्स के लिए तैयार? मैं वासना में बोली, क्या सच में? और उसकी तरफ बढ़ने लगी। मेरी भी इच्छाएँ प्रबल थी और अशोक को ऐसा करने से मैं रोक नहीं पाई। वो मेरी तरफ लपका और फटाफट मुझे उसने किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर एक दूसरे को किस करने के बाद अशोक ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों को पीछे से ले जाकर उसने मेरे बूब्स पकड़ लिए, दबाते हुए मेरी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। दोनों मदहोशी के आलम में खो चुके थे। कुछ देर बाद मेरा अशोक की तरफ मुड़ी और अपने घुटनों पर बैठ गई। मैं धीरे से अशोक के अंडरवियर को नीचे सरकाया और उसके लंड को अपने मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद खड़ी हुई तो अशोक ने अपनी बॉस को गोदी में उठा लिया। अशोक ने मुझे बेड पर लेटाया और मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चूमने चाटने लगा। अपनी जीभ को निकाला और मेरी जूत को रख दिया। मैं भी पूरे जोश में आ गई। कमरे में आवाज़ें सिसकारियों की आह आह गूंजने लगी। कुछ देर तक जूत को चूमने चाटने के बाद अशोक ने मेरी जूत पर अपना लंड रखा और अपने लंड को मेरी गीली जूत में डाल दिया। मेरी आह निकली। अशोक ने तेज तेज धक्कों के साथ मुझे बेलना चालू किया। हम दोनों अपनी मस्ती में खो गए। तभी कांता आई। कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसने हम दोनों को इस हालत में देख लिया। ये देखकर उसके अंदर की जवानी भी फूटने लगी। कांता एक भरपूर जवान औरत है और कई दिनों से उसने अपनी जवानी को भोगा नहीं था क्योंकि शंकर चुदाई में आई थी, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता था। कांता अशोक और मेरे को यौन संबंध बनाने का सुख लेता देख अपनी साड़ी को ऊपर उठाकर अपनी जूत में उंगली करने लगी। काफ़ी देर तक चले इस खेल के बाद हम दोनों थक कर सो गए। पर इधर कांता बेचैन हो गई। उसकी आंखों के आगे तो बस अशोक का नग्न शरीर ही घूम रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपकी टांगों के बीच में रस निकलने लगा होगा। आगे और भी बहने वाला है। अगली कहानी में मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ।